दिन भर 2 मई दिन मंगलवार, मैं हूं रेहान फदर। चीन ने मांग की अमेरिका दक्षिण कोरिया से थर्ड मिसाइलें हटाए, लेकिन इस बात पर खुश भी कि ट्रंप उत्तर कोरियाई नेता से मिलने के लिए तैयार। देखेंगे क्या भारतीय जनता पार्टी करदाताओं के धन से धार्मिक आयोजनों में मदद कर रही है।
भारत में जो अन्य धर्मावलंबी हैं हिंदू धर्म से इतर, उनको स्पष्ट संदेश मिल रहा है कि यह राज्य अपने आप को हिंदू धर्म से बहुत करीब से जोड़ रहा है।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। चीन ने अमेरिका की ओर से दक्षिण कोरिया में लगाए गए मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तुरंत हटाने की मांग की है। अमेरिका ने जैसे ही इस सिस्टम के चालू होने की जानकारी दी, उसके थोड़ी ही देर बाद चीन ने अपना विरोध जाहिर किया। चीन लगातार डिफेंस सिस्टम और इसकी रडार को लेकर नाखुशी जाहिर करता रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि उनका देश अपने हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा। उन्होंने कहा कि चीन हमेशा मानता है कि उत्तर कोरिया के परमाणु मुद्दे का हल बातचीत के जरिए ही तलाशा जा सकता है। सीरिया के उत्तर पूर्व से मिली रिपोर्टों के मुताबिक सीरिया और इराक की सीमा पर इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों ने कई प्रवासियों की जान ले ली है और दर्जनों को घायल कर दिया है। इराक के प्रवासियों और सीरिया के विस्थापितों को निशाना बनाने के लिए इस्लामिक स्टेट ने कथित तौर पर आत्मघाती हमलावरों का इस्तेमाल किया है। हमले के बाद से अमेरिका के समर्थन वाले विद्रोही गुटों और इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों के बीच संघर्ष जारी है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान ने कहा है कि वो यूरोपीय यूनियन में शामिल होने की कोशिशें बंद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर यूरोपीय यूनियन उन मुद्दों पर बातचीत को तैयार नहीं होता है जिन पर सहमति बनानी जरूरी है, तो वो यूरोपीय यूनियन को अलविदा कहना बेहतर समझेंगे। यूरोपीय यूनियन के एनलार्जमेंट कमिश्नर योहानस हास ने कहा कि मानवाधिकार के मुद्दे पर तुर्की यूरोप के मानदंड से अलग हट रहा है। वहीं तुर्की के साथ बातचीत के मामले को देख रही कैटी पीरी ने बातचीत निलंबित करने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि बीते 12 महीने मुश्किल भरे रहे हैं, जबकि तुर्की के लोगों को सीरिया में जारी संघर्ष की वजह से दिक्कतें हुई हैं। देश में 30 लाख प्रवासी हैं और इनके अलावा 15 जुलाई को तख्ता पलट की कोशिश भी हुई थी। साथ ही सरकार की प्रतिक्रिया से मूलभूत अधिकारों का मुद्दा और भी गंभीर हो गया है। एक ऐसा उम्मीदवार देश जो यूरोपीय यूनियन में शामिल होना चाहता है, और हम अगर इस प्रक्रिया को गंभीरता से लेते हैं और हम उन मूल्यों का लगातार हनन देखते हैं जिनके प्रति यूरोपीय यूनियन समर्पित है, तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। इसी वजह से हम बातचीत निलंबित करने की मांग कर रहे हैं। ये थे कैटी पीरी के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। फ्रांस की दक्षिणपंथी नेशनल फ्रंट पार्टी ने अपनी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मरी लापेन की ओर से रेस से बाहर हो गए एक उम्मीदवार के भाषण को दोहराने के मामले को तूल नहीं दिया है। मरी लापेन ने अपने भाषण में फ्रांसवा फियो के 2 हफ्ते पहले दिए गए भाषण को दोहराया था। फियो राष्ट्रपति पद की रेस से बाहर हो चुके हैं। इसे लेकर मरी लापेन को सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना झेलनी पड़ रही है। थाईलैंड सरकार के प्रमुख प्रायुत जन ओचा ने कहा है कि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे कहा है कि वो दोनों देशों के संबंधों में सुधार चाहते हैं। ये वॉशिंगटन के साल 2014 से जारी नजरिए से अलग रास्ता है। साल 2014 में थाईलैंड में तख्ता पलट के बाद वहां कई असंतुष्टों को जेल में डाल दिया गया था। ओचा एक सैन्य अधिकारी थे जो बाद में प्रधानमंत्री बने। उन्होंने बैंकॉक में मीडिया से कहा, अमरीकी राष्ट्रपति ने कहा है कि हम उनके अच्छे सहयोगी हैं। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया है कि भले ही हाल में हमारे बीच दूरी रही हो, लेकिन थाईलैंड और अमरीका के संबंध अब पहले के मुकाबले ज़्यादा नज़दीकी होंगे। ये थे प्रायुत ओचा के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। मानवाधिकार समूह एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आरोप लगाया है कि बांग्लादेश सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगा रही है और अतिवादियों की ओर से लेखकों और पत्रकारों पर होने वाले हमले रोकने में नाकाम साबित हुई है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। शुरुआत करते हैं उत्तर कोरिया से। अमेरिका ने उत्तर कोरिया के साथ बढ़ते तनाव के बीच दक्षिण कोरिया में एक विवादास्पद मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है, जो उत्तर कोरिया के मिसाइलों को रोकने में सक्षम होगा। अमेरिका के इस कदम पर उत्तर कोरिया ने तो आपत्ति की ही है, दक्षिण कोरिया ने तो आपत्ति की ही है, चीन ने भी सख्त एतराज किया है। चीन ने इस सिस्टम को तत्काल हटाने की मांग की है और साथ ही कहा है कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे के साथ अपूर्व कृष्ण।
अमेरिका ने पिछले हफ्ते ही कहा था कि वो विवादास्पद थार्ड यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस मिसाइल सिस्टम को दक्षिण कोरिया में तैनात करेगा और अब उसने ये तैनाती कर भी दी है। ये डिफेंस सिस्टम हालांकि अभी पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं है और इसमें कुछ महीने और लगेंगे। अमरीकी सेना का कहना है कि इससे दक्षिण कोरिया की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी, मगर उत्तर कोरिया ने ताजा अमरीकी सैन्य अभ्यास पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है कि अमरीका इस इलाके में परमाणु युद्ध जैसे हालात बनाने की कोशिश कर रहा है। पिछले साल ही जब अमरीका ने थार्ड सिस्टम को दक्षिण कोरिया में लगाने के बारे में जानकारी दी थी तो उत्तर कोरिया ने इसकी आलोचना करते हुए कहा था कि इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। और आज उत्तर कोरिया के सरकारी टीवी कार्यक्रम में अमरीका के लड़ाकू विमानों की उड़ान को भड़काने वाली कार्रवाई बताया गया।
कोरिया के ऊपर B-1B विमानों ने उड़ान भरी, यहाँ तक कि उन्होंने परमाणु बम गिराने का अभ्यास किया। अमरीकी सेना की भड़काने वाली कार्रवाइयाँ दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से पहले से तनावपूर्ण स्थिति बिगड़ती जा रही है और हम एक परमाणु युद्ध के कगार पर पहुँच गए हैं।
उत्तर कोरिया के सरकारी टीवी कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया। चीन ने भी इस मिसाइल सिस्टम का कड़ा विरोध किया है और कहा है कि इससे चीन के सैन्य अभियानों में खलल पैदा हो रही है। चीन ने कहा है कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। हालांकि उसने डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान का स्वागत किया है कि वे किम जोंग उन से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने कहा,
सबसे जरूरी ये है कि तनाव घटाया जाए। इसका सबसे कारगर तरीका है जल्द से जल्द संवाद शुरू करना। हमने ताज़ा अमरीकी बयानों पर गौर किया है और वे भड़काने वाले हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि चीन और अमरीका मिलकर बातचीत शुरू कराने के लिए कदम उठाएंगे।
चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग के शब्द। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले ही कहा था कि वो उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन से सही परिस्थितियों में मिलकर सम्मानित महसूस करेंगे, मगर कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तर कोरिया लगातार धमकियां दे रहा है और वहीं अमेरिका ने इन इलाकों में अपने युद्धपोतों और पनडुब्बियों को तैनात किया हुआ है और अब अमेरिका ने अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है, जो मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को उड़ान के शुरुआती दौर में ही गिराने में सक्षम है। अमेरिका ने इससे पहले गुआम और हेती में भी इसकी तैनाती की है ताकि उत्तर कोरिया के हमलों से इन इलाकों को बचाया जा सके।
चीन ने दक्षिणी कोरिया में थार्ड मिसाइलें तैनात करने पर आपत्ति की।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
और अब रुख करते हैं भारत का। भारतीय कश्मीर में कई चरमपंथी हमलों और पाकिस्तान के साथ सीमा पर झड़पों के बाद भारतीय प्रशासन ने 25 मई को दक्षिण कश्मीर में होने वाले उपचुनाव को रद्द कर दिया है। चुनाव आयोग ने 10 पन्नों के अपने आदेश में कहा है कि अभी वहां चुनाव कराने के लिए हालात उपयुक्त नहीं है। श्रीनगर से रियाज मसरूर की रिपोर्ट।
भारत के निर्वाचन आयोग ने यह निर्णय घाटी में 3 सप्ताह से जारी भारत विरोधी प्रदर्शनों और चरमपंथी हमलों में बढ़ोतरी के संदर्भ में लिया है। आयोग के वक्तव्य में कहा गया है कि घाटी में चुनावी प्रक्रिया के लिए स्थिति अनुकूल नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि इस निर्णय से और खून खराबा नहीं होगा तथा कुछ वर्गों का कहना है कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा।
जो उन्होंने इसको पोस्टपोन किया उससे उनको कुछ नहीं होगा, उसको असल मसला देखना है, मसले कश्मीर हल करना है।
डिसीजन अच्छा है गवर्नमेंट की तरफ से कि इलेक्शन पोस्टपोन हुआ, दोबारा से नहीं हुआ इलेक्शन, क्योंकि अगर और होता तो यहाँ पे खून खराब होता है।
विश्लेषकों का मानना है कि निर्वाचन आयोग का निर्णय दरअसल इस बात को स्वीकार करना है कि घाटी में सब ठीक ठाक नहीं है। चिकित्सक और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अल्ताफ हुसैन कहते हैं,
हालात इसलिए नहीं है कि डिस्प्यूटेड है, यहाँ लोग नाखुश हैं, लोग चाहते हैं मसले का हल, लोग चाहते हैं सियासी मसला जो है वो हल हो जाए, वो एड्रेस किया जाए और ये बाकी चीज़ें सब उसके बाद ही हो सकती हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहली बार ये मान लिया कि ये उनके बस की बात नहीं है कि एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी इतनी बड़ी हुकूमत, इतना बड़ा मुल्क इलेक्शन नहीं करवा सकती।
गौरतलब है 9 अप्रैल को श्रीनगर में हुए उपचुनाव के दौरान वोटिंग पर बॉयकॉट का प्रभाव रहा। हिंसक प्रदर्शनों को दबाने की सरकारी कार्रवाई में 8 लोग मारे गए। 12 मई को अनंतनाग की सीट के लिए भी उपचुनाव होने थे, लेकिन इन्हें 25 मई तक टाल दिया गया। पिछले कई सप्ताह से घाटी के अधिकतम इलाकों में भारत विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं और चरमपंथियों के हमलों में भी बढ़ोतरी हुई है। इसी संदर्भ में निर्वाचन आयोग ने केंद्र सरकार से कहा था कि अनंतनाग में उपचुनाव के लिए 70,000 से अधिक अर्धसैनिक कर्मचारियों की दरकार होगी, परंतु बाद में चुनाव को ही स्थगित करने की घोषणा की गई। रियाज मसरूर, BBC श्रीनगर।
1 मई से भारत में रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट रेरा लागू हो चुका है, जिसे आगे आने वाले दिनों में घर खरीदने वालों को समय पर गैरों का कब्जा मिलने में आसानी हो सकेगी। हालांकि रेरा को लागू करने की अधिसूचना सिर्फ 1 दर्जन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने की है, लेकिन अनुमान है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रदेश इसमें थोड़े बहुत संशोधनों के बाद इसे लागू कर देंगे। लेकिन उन ग्राहकों का क्या जिन्होंने इस कानून के पहले घरों में पैसे लगाए थे और जिन्हें अब तक कब्जा नहीं मिल सका है? BBC संवाददाता नितिन श्रीवास्तव इसी बात की टोह लेने दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा पहुंचे।
इस वक्त मौजूद हम ग्रेटर नोएडा में हैं और हमारे साथ जो लोग हैं उनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो फ्लैट खरीद कर एक तरह से एक चक्रव्यूह में अपने को फंसा हुआ बता रहे हैं। उनसे हमारी बहुत देर से बात हो रही है। पहले आपसे बात करते हैं, आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हैं आप?
अमृतास मेरा नाम है, मैं इंदिरापुरम में रहता हूँ।
इंदिरापुरम में रहते हैं, गाजियाबाद
जी जी। 2013 में जी स्काई वॉक नाम के प्रोजेक्ट में
आपने घर लिया था जी,
फ्लैट बुक कराई थी। उसके आपको जो बिल्डर हैं वैल्यू इंफ्रा बिल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
जी जी,
इसके MD आपको प्रमोद कुमार सिंह हैं
जी जी।
इन्होंने करीब 176 बायर से 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा इन्होंने आपको ऐठा और ये करीब 1.5 साल से आपको एब्सकॉन्डिंग है।
रेरा का जो कानून आया है
जी,
कल से रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट एक नया कानून लागू हुआ है। अभी कोई 1 दर्जन राज्य हैं जिन्होंने इस तरह का कानून लागू किया है। राज्यों के पास ये चॉइस है कि वो उसको संशोधन कर सकते हैं। क्या आपको उम्मीद है इस कानून
नहीं
से?
है,
और
नहीं, है, नहीं, है,
आपको उम्मीद नहीं है?
नहीं है, क्योंकि आपको ये नए वाले के लिए तो कुछ इसमें है, लेकिन जो पुराने वाले जहाँ पर बिल्डर भाग गए, हमारे तरह के जो सफरर है उनके लिए कुछ भी नहीं है,
उनके लिए कुछ नहीं है ऐसा आपको लग रहा है? हमारे साथ बायर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं अभिषेक। अभिषेक, आपको क्या लगता है कि
देखिए मैं बताता हूँ, रेरा जो सेंट्रल में जो रेरा पास हुई है, जो सेंट्रल ने जो लोकसभा राज्यसभा से रेरा पास हुआ है, उसमें सारा प्रावधान है कि उसमें पुराने प्रोजेक्ट भी आएंगे, लेकिन कुछ स्टेट सब्जेक्ट है जो स्टेट सब्जेक्ट में स्टेट वाले ये कर सकते हैं क्या, उसको डायल्यूट कर सकते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल लें, क्योंकि हम अभी यूपी में, तो यूपी का एग्जाम्पल लेते हैं, क्या यूपी में पिछली सरकार अखिलेश सरकार ने इसको डायल्यूट करने की कोशिश की गई थी। फिर हम लोगों ने 27th को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिला और हमें बताया कि जो सेंट्रल में जो रेरा पास हुआ है सेम रेरा यहाँ पर इंप्लीमेंट होना चाहिए। अगर वे रेरा इंप्लीमेंट होता है एज इट इज जो सेंट्रल से पास हुआ है, तो मुझे लगता है कि अब इसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी और 70% तक प्रो मतलब सभी बायर्स के लिए भी उसमें बातें हैं।
किसी भी नए प्रोजेक्ट में ग्रेटर नोएडा में ऐसे दर्जनों प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत दिनों से टले हुए हैं, उनके जो बायर्स हैं वो थोड़े परेशान अपने को बता रहे हैं, जाहिर है पैसा फंसा हुआ है। किसी भी बिल्डर को ये अब अनिवार्य रहेगा कि वो नए प्रोजेक्ट में जो 70% पैसा उनके पास आता है उसको एक एस्क्रो अकाउंट में जमा कराएं, ताकि वो दूसरे प्रोजेक्ट में उसको इस्तेमाल न कर सके पैसे को। आप बताएं, इस तरह के कानून की जरूरत थी बहुत दिनों से?
देखिए, ये कानून जो है, हम इस कानून का वेलकम करते हैं रेरा का, लेकिन बात वही है जो भाई साहब ने बोला कि जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं जो डिले हो चुके हैं 6 या 7 साल में, उनमें है कि जैसे रेरा के अंडर में उनको इक्वलेंट डिले पेनल्टी मिलेगी। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, अगर किसी प्रोजेक्ट के अंदर में 8 या 10 फ्लैट हैं, तो 8 या 10 फ्लैट में अगर डिले इक्वलेंट अगर पेनल्टी की बात करें 24%, तो हर एक फ्लैट पे 8 से 10 लाख रुपये पेनल्टी मिलेगी। तो वो 8 या 10 फ्लैट मल्टीप्लाई बाय 8 लाख रुपये पेनल्टी वो बिल्डर दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर वो दे पाएगा तो वो पहले से प्रोजेक्ट कंप्लीट करके रखता। तो इसलिए प्रैक्टिकलिटी अगर हम में जाते हैं, तो ये प्रोजेक्ट जो है, ये रेरा जो है, ये पुराने बायर को हेल्प नहीं करेगा, जो नए बायर हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी आएगी।
नए कानून में ये प्रावधान है कि आगे चलकर धोखाधड़ी या अगर समय तय सीमा पर फ्लैट ना देने में बिल्डरों को या किसी को भी जो डेवलपर से उनको 3 से 5 साल की सजा।
इम्पोर्टेंट बात समझने वाली बात यह है कि रेरा जिस वजह से आया वो वजह यह थी कि बहुत सारे फ्रॉड हुए थे। अब आगे के टाइम में आप फ्रॉड को कम करने की कोशिश करेंगे, तो जो एग्जिस्टिंग फ्रॉड हुए हैं उनका सॉल्यूशन क्या है? उनका सॉल्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी ना बैंक लेने को तैयार है, ना अथॉरिटी लेने को तैयार है, ना पुलिस प्रशासन लेने को तैयार है, उन बाहर से क्या होगा?
क्रेडाई जो संस्था है बिल्डरों की, उनसे भी लगातार बात होती रही है। क्रेडाई का ये कहना है कि जो बिल्डर्स के ग्रुप्स हैं वो लोग ये कहते हैं कि बहुत वेलकम मूव है, बहुत अच्छा कदम है सरकार का, इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी।
क्रेडाई के लिए मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जो हम लोग का प्रोजेक्ट है ये वैल्यू इंफ्रा स्काई वॉक, ये जब 2013 में हम सब ने खरीदा था ये क्रेडाई से अप्रूव्ड था। हम ऐसा लगता है ये शुरू में अप्रूव करते हैं, इनका काम है रेगुलेट करना, लेकिन ये ना तो रेगुलेट करते हैं, ऐसा लगता है शुरू में ये सिर्फ प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे ये प्रोजेक्ट क्रेडाई से अप्रूव्ड था, उनके लिस्ट में था। अब जाके क्रेडाई के साइट पे देखो, उनसे बात करो तो बोलते हैं वो तो हमारी लिस्ट में ही नहीं है। यदि कोई प्रोजेक्ट अप्रूव करते हैं और जब वो बिल्डर भाग गया तो लिस्ट से हटा दिया, तो फिर क्या रेगुलेट किया, क्यों अप्रूव किया, क्या जिम्मेवारी?
आप बताइए अभिषेक, आप तो बायर एसोसिएशन में हैं, आप तमाम तरह के बायर्स आपके पास आते हैं।
बिल्कुल।
कितने प्रोजेक्ट्स रफली हैं यहाँ पर आसपास, अगर हम इस इलाके की बात करें?
करीब 4.5 लाख फ्लैट बनना है, ये दो एरिया को मैं मिला दूं, मतलब 4.5 लाख फैमिली फंसे हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश शासन को वही रेरा इम्प्लीमेंट करना चाहिए जो सेंट्रल से पास हुआ है, तभी उनका समाधान होगा 4.5 लाख लोगों का, अदरवाइज फिर तो ये बायर सबका समस्या का समाधान ही नहीं हो पाएगा।
रेरा कानून पर लोगों की राय।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,510, 9,460, 11,795 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज पर।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। भारत ने साउथ एशिया सैटेलाइट लॉन्च करने का फैसला किया है, इसे 5 मई को प्रक्षेपित किया जाएगा। दक्षिण एशिया के सभी देशों के दूर संचार के लिए बनाए गए इस सैटेलाइट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात रेडियो प्रोग्राम में एक अनमोल तोहफा बताया था, लेकिन पाकिस्तान ने इस तोहफे को लेने से इनकार कर दिया है। इसे लेकर बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य ने विज्ञान मामलों के जानकार पल्लव बागला से बात की।
ये भारत की तरफ से अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसी देशों को एक ऐसा तोहफा है जिसको कि वो और कहीं से प्राप्त नहीं कर सकते थे। भारत के पास ऐसी अव्वल दर्जे की सैटेलाइट बनाने की टेक्नोलॉजी है, रॉकेट बनाने की टेक्नोलॉजी है, और उसको पूरी तरह से एंड टू एंड कैपेबिलिटी है। अब इसको अपने डेवलपमेंट के लिए तो भारत कई दशकों से यूज कर रहा है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये जो तोहफा है ये अपने पड़ोसी देशों की डेवलपमेंट के लिए है। जैसे कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का एक अपना स्लोगन था, सबका साथ सबका विकास, वो सबका साथ सबका विकास अब पड़ोसी देशों पे भी एक्सटेंड करा जा रहा है साउथ एशिया सैटेलाइट से, और इसको स्ट्रेटोस्फीयर तक ले जाया जा रहा है, मतलब अंतरिक्ष तक ये सबका साथ सबका विकास जो है भारत के पड़ोसी देशों के लिए एक्सटेंड किया जा रहा है।
पर इससे भारत को क्या फायदा होगा?
देखिए, भारत को इससे बहुत फायदा होगा। आपके नेबरहुड में चाइना जो है वो कॉन्स्टेंटली इनग्रेस कर रहा है। ऑलरेडी हमारे दो पड़ोसी देशों के लिए चाइना ने सैटेलाइट बना के छोड़े हैं, श्रीलंका के लिए और पाकिस्तान के लिए, और बाकी देशों को चाइना जो है एक बहुत पैनी नजर से देख रहा है और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में उनकी मदद करने को तैयार है। तो कहीं ना कहीं भारत की ऐसी मंशा है कि अपने नेबरहुड में जब आपके पास अपनी टेक्नोलॉजी है, अपनी कैपेबिलिटी है, तो भारत के नेबर्स भारत के ऊपर निर्भर हो, ना कि चाइना के ऊपर। लेकिन चाइना के पास पहले ही फर्स्ट मूवर का एडवांटेज ऑलरेडी है, तो कितनी दूर तक ये काम आएगा और ये कितनी डिप्लोमेटिकली सक्सेसफुल होगा ये तो टाइम ही बताएगा।
और इस तोहफे को लेने से जो पाकिस्तान ने इनकार किया, साल 2015 में ही ऑप्ट आउट करने का फैसला किया पाकिस्तान ने, जिसके बाद इसका नाम सार्क सैटेलाइट से साउथ एशिया सैटेलाइट कर दिया गया, उसका क्या असर देखते हैं?
ये पाकिस्तान के लिए मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। अगर आप पाकिस्तान का अपना स्पेस प्रोग्राम देखें, वो बहुत ही प्रिमिटिव स्टेज में है, ना तो वो सैटेलाइट बनाते हैं, ना उनके पास हैवी ड्यूटी रॉकेट हैं। तो अगर उनको एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट या कम्युनिकेशन सैटेलाइट के एक ट्रांसपॉन्डर तोहफे में मिल रहा था, तो वो उनको इकबाल करके उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत थी। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं देखिए, दोनों नेबर्स बहुत हॉस्टाइल हैं, दोनों नेबर्स एक दूसरे को बड़े सस्पिशन से देखते हैं, तो उसी सब का असर है कि पाकिस्तान जो है उसको लगा कहीं ना कहीं कि उनके अहंकार को कोई ठेस पहुंच रही होगी कि भारत एक भारत से कैसे तोहफा ले लें। लेकिन आप जब तोहफा दे रहे हैं और अगर कोई तोहफा लेने से इनकार कर दे तो उसमें भारत की कोई नीचे दिखने वाली मुझे नहीं दिखाई।
सैटेलाइट की बात करें तो सैटेलाइट अपने आप में एक तकनीकी क्षेत्र में कितना बड़ा कदम है जो भारत ने अचीव किया है और उससे कितना फायदा होगा इन पड़ोसी देशों को?
अगर तकनीकी तौर पे देखें तो ये साउथ एशिया सैटेलाइट जो है ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और मेरे हिसाब से इसमें बहुत कोई नई चीज नहीं है। अगर मैं इसको एक तरह से समझाऊं तो ये उसी तरह से है जैसे कि एक नई मारुति कार निकल के आ रही है मारुति की फैक्ट्री में से। तो ऐसे कम्युनिकेशन के सैटेलाइट भारत ने कई बनाए हैं और इस तरह का ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट केवल एक और आगे बढ़ रहा है जिससे हर पार्टिसिपेटिंग देश जो है वो अपने लिए प्रोग्राम अपलिंक डाउनलिंक कर सकता है। वो प्रोग्राम उनको अपने आप बनाने होंगे और कुछ कॉमन प्रोग्रामिंग भी हो सकती है।
पल्लव अगला से बात कर रही थी दिव्या आर्य। सोमवार को दिल्ली के कई अखबारों में मध्य प्रदेश में आदि शंकराचार्य प्रकटोत्सव के आयोजन के बारे में इश्तेहार छपे। अपनी तरह का ये पहला आयोजन है। इससे पहले 2016 में हरियाणा की भाजपा सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय गीता दिवस का आयोजन किया था। हिंदू हितों की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी क्या हिंदू पुनरुत्थान के तहत ये आयोजन कर रही है और इसमें आम टैक्सपेयर के धन का इस्तेमाल क्यों किया जाए? विनीत खरे की रिपोर्ट।
हिंदू दर्शन शास्त्र में आदि शंकराचार्य का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने चारों धामों की स्थापना की थी। आदि शंकराचार्य ने माधवाचार्य और रामानुजाचार्य के साथ मिलकर सनातन परंपरा के पुनरुत्थान के लिए काम किया। मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लिखते हैं, आज से लगभग 1200 वर्ष पूर्व यानी 792 ईस्वी में आदि शंकराचार्य मध्य प्रदेश में नर्मदा तट पर ज्ञान प्राप्त के लिए आए थे। ब्लॉक के अनुसार सरकार ने फैसला किया है कि मध्य प्रदेश में आदि शंकराचार्य के पाठ शिक्षा की पुस्तकों में जोड़े जाएंगे। ओंकारेश्वर में शंकर संग्रहालय, वेदांत प्रतिष्ठान और शंकराचार्य की बहुधातु मूर्ति स्थापित की जाएगी। लेकिन भारत जैसे सेक्युलर देश में राज्य सरकार का किसी धर्म विशेष के व्यक्ति से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन कितना सही है, खासकर जब धर्म को मानने वाले बहुसंख्यक हैं? क्या ये हिंदू पुनरुत्थानवाद की ओर एक और कदम है और नए हिंदू उत्सवों धार्मिक व्यक्तित्वों का महिमामंडन किया जा रहा है? राजनीतिक विश्लेषक अपूर्वानंद कहते हैं,
दुष्परिणाम यह है कि भारत में जो अन्य धर्मावलंबी हैं हिंदू धर्म से इतर, उनको स्पष्ट संदेश मिल रहा है कि यह राज्य अपने आप को हिंदू धर्म से बहुत करीब से जोड़ रहा है और अपने आप को हिंदू धर्म के संरक्षक और समर्थक के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। इससे उनका अलगाव भारतीय राज्य से बढ़ेगा।
उधर धार्मिक मामलों के जानकार एक वरिष्ठ पत्रकार के अनुसार इसमें कोई गलत नहीं। उनके अनुसार भारत में जहां कई धर्मों के लोग रहते हैं वहां सरकारें हज से लेकर सिखों के SGPC से जुड़ी हैं। फिर गीता उत्सव और आदि शंकराचार्य प्रकटोत्सव के आयोजन में क्या सही नहीं है? मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री सुरेंद्र पटवा किसी भी धर्म विशेष का पक्ष या उसे अनदेखा करने का खंडन करते हैं।
पूरे देश के हैं, मध्य प्रदेश के नहीं, पूरे देश के हैं वो तो, और ओंकारेश्वर भी रहे हैं वो, और उसमें अलग अलग मान्यता है, चाहे वो गुरु नानक जयंती हो चाहे ईद हो। माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास में हमेशा इस तरह के कार्यक्रम होते रहे हैं और भी इसके अलावा भी, अब जैसे मान लीजिए नर्मदा सेवा का अभियान है, तो ये तो एक सभी के लिए है।
उधर अपूर्वानंद सोमनाथ मंदिर और महात्मा गांधी के दिनों की याद दिलाते हैं।
महात्मा गांधी जो कि सनातनी हिंदू थे, उन्होंने सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार में भारतीय राज्य के संसाधन लगाने का विरोध किया था। राजेंद्र प्रसाद ने उनकी बात नहीं मानी, लेकिन राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी से बड़े हिंदू तो नहीं थे, कोई भी उनसे बड़ा हिंदू नहीं था, लेकिन गांधी ने बहुत स्पष्ट कहा था कि सोमनाथ के जीर्णोद्धार में भारतीय राज्य का पैसा नहीं लगना चाहिए।
भारत जैसे देश में जहां धर्म एक बेहद संवेदनशील विषय है, वहां क्या जरूरी नहीं कि सरकार खुद को किसी भी धर्म के बहुत ज्यादा नजदीक जाने से रोके? इसका उल्टा तर्क है कि धर्म और राज्य को अलग रखने की बात करना तो सही है, लेकिन जमीन पर इसे अमल में लाना कितना आसान है। उधर अपूर्वानंद कहते हैं कि जब पश्चिमी देशों में धर्म और राज्य ने खुद को एक दूसरे से अलग रखा है तो भारत में ये संभव क्यों नहीं।
भारत के बारे में यह गलत फहमी है कि वही एकमात्र धार्मिक है। इंग्लैंड हो या अमेरिका हो, ये कहीं ज्यादा धार्मिक देश है। खुद सिखों को इस पर विचार करना पड़ेगा। अभी उन्होंने विचार करना शुरू नहीं किया है, लेकिन उनको विचार करना पड़ेगा कि उन्होंने धर्म और राजनीति को जिस तरह मिला दिया है उसके सुपरिणाम हुए हैं या कुपरिणाम हुए हैं। रहा सवाल हज की में एक तरह के छूट का, तो वह दरअसल आप छूट क्या देते हैं? आप एयर इंडिया की उड़ान में छूट देते हैं, जो कि हज यात्री बार बार कह रहे हैं कि आप इसे बंद कीजिए क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसा लगता है। और हज का जहाँ उदाहरण दिया जाता है वहाँ मानसरोवर का उदाहरण लोग भूल जाते हैं। हज भी तीर्थ यात्रा है और मानसरोवर भी तीर्थ यात्रा है, वैष्णो देवी भी तीर्थ यात्रा है। तीर्थ यात्राओं में अनिवार्यतः कष्ट शामिल है, आपको अपने आप को कष्ट देना है, साधना का अंग है। यदि आप कष्ट नहीं दे रहे हैं खुद को और एक सुविधाजनक ढंग से तीर्थ कर रहे हैं तो फिर तीर्थ हुआ ही नहीं।
वरिष्ठ वकील और संविधान मामलों के जानकार अरविंद दातार के मुताबिक संविधान में ऐसा कुछ नहीं जो सरकार को कोई धार्मिक आयोजन करने से रोके। संविधान मामलों के जानकार एक अन्य व्यक्ति के मुताबिक भाजपा सरकारों के ऐसे आयोजनों में पूर्व सरकारों के मुस्लिम वोट बैंक को ध्यान में रखकर लिए गए कदमों का बैकलैश दिखता है। विनीत खरे, बीबीसी दिल्ली।
नजर दौड़ाते हैं आज की खेल गतिविधियों पर सुमरनप्रीत कौर के साथ। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है, ऑस्ट्रेलिया ने उसे 3-1 से हरा दिया है।
स्पोर्ट्स की दुनिया की खबरों के साथ मैं हूं सुमरनप्रीत कौर। आईपीएल में आज मुकाबला होगा दिल्ली डेयरडेविल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच। जहां तक आईपीएल के पॉइंट्स टेबल की बात है तो सबसे आगे है मुंबई इंडियंस और आखिर में 8वें पायदान पर है दिल्ली डेयरडेविल्स। 16 मई से शुरू हो जाएंगे आईपीएल के 10वें सीजन के प्लेऑफ्स, जहां सिर्फ 4 टीमें ही क्वालिफाई कर सकती हैं। यहां से राह आसान नहीं है दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए, बता रहे हैं पूर्व क्रिकेटर विजय दहिया।
जिस तरीके की क्रिकेट वो खेल रहे हैं मुझे तो कोई भी आश्चर्य नहीं है। आप 70-80% आप अपने मैच खेल चुके हैं, तब भी आपको ये नहीं पता कि आपकी टीम क्या होनी चाहिए। बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं डगआउट के अंदर। मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर यही टीम निरंतरता के साथ खिलाई जाए और डगआउट में कोई भी ना बैठा हो तो भी इससे बढ़िया प्रदर्शन कर सकती है। और दिल्ली का आपकी अगर सोची इस तरीके की होगी तो फिर परिणाम तो जो क्रिकेट खेलते हैं या जो फॉलो करते हैं उन्हें रत्ती भर भी आश्चर्य नहीं है कि जिस तरीके का परिणाम दिल्ली क्रिकेट के साथ दिल्ली डेयरडेविल के हो रहे हैं वो तो होने ही थे।
तो आईपीएल में आज मुकाबला है दिल्ली डेयरडेविल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच दिल्ली में। अब बात हॉकी की। मलेशिया में सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में भारत को हार का सामना करना पड़ा। वर्ल्ड चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 3-1 से हरा दिया। अगर सुल्तान अजलान शाह कप के पॉइंट्स टेबल की बात की जाए तो सबसे आगे हैं ऑस्ट्रेलिया, फिर ग्रेट ब्रिटेन और फिर भारत। इस टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाएगा इस शनिवार को यानी 6 मई को। भारतीय हॉकी टीम के सिलेक्टर हरबिंदर सिंह का कहना है कि जब जब भारत किसी बड़ी टीम के साथ खेलती है तो उसके आत्मविश्वास पर असर देखा जा सकता है, लेकिन हार और जीत का सिलसिला एक तरफ और नए खिलाड़ियों को एक्सपीरियंस दिलाना दूसरी तरफ, क्योंकि तैयारी हो रही है 2018 के लिए।
जब भी बड़ी टीमों के साथ खेलते हैं कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस लेवल में जरूर फर्क पड़ता है। हमेशा ही ये ऑस्ट्रेलिया हो, हॉलैंड हो, जर्मनी हो, बड़े दमदार मैच होते हैं। अगर गलतियां करेंगे तो मैच का रिजल्ट में जरूर फर्क पड़ता है। हम चाहते हैं कि आने वाले जो टूर्नामेंट्स हैं, जो 2018 में एक 4 मेजर टूर्नामेंट है, फिर 2020 में ओलंपिक्स है, तो उसकी तैयारी के लिए जो सब प्लेयर को चांस दिया जा रहा है, अलग अलग टूर्नामेंट जो कोर ग्रुप है सबको खिलाया जाएगा, फिर एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनेगा।
अब बात फुटबॉल की। UEFA चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल्स में आज मुकाबला है रियल मैड्रिड और एथलेटिको मैड्रिड के बीच।
सभा के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। चीन ने अमेरिका की ओर से दक्षिण कोरिया में लगाए गए मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तुरंत हटाने की मांग की है। सीरिया के उत्तर पूर्व से मिली रिपोर्टों के मुताबिक सीरिया और इराक की सीमा पर इस्लामिक स्टेट के हमले में कई प्रवासियों की मौत हो गई है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि वो यूरोपीय यूनियन में शामिल होने की कोशिशें बंद कर सकते हैं। थाईलैंड सरकार के प्रमुख ने कहा है कि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे कहा है कि वो दोनों देशों के संबंधों में सुधार चाहते हैं। मानवाधिकार समूह एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आरोप लगाया है कि बांग्लादेश की सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगा रही है। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यही विराम देते हैं। स्टूडियो संभाल रहे थे शाकिर आलम। रेहान फदल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।